अब तो संत ने क्योंकि आशीर्वाद दिए थे कि पहला आशीर्वाद उन्होंने क्या दिया था, राजकुमार को चिरंजीवी भव, और उन्होंने जो ब्रह्मचारी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए, और उन्होंने कसाई के बेटे को क्या बोला कि तुम ना जियो और ना मरो। और फिर एक भक्त मिला उनको, तो संत ने बोला कि तुम जियो या मरो, है ना। सो वो सब लोगों ने पूछा उन संत महात्मा से कि आखिर इन वरदानों का अर्थ क्या है। हा? तो वो संत ने बोला कि देखो, जो राजा का बेटा है, बहुत उसने पुण्य कर्म किए, वो होने तो लड़ाई, वो ये भौतिक जगत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, आप लोग जो हम आपको बताने आए हैं इससे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। सो आपके आसपास कुछ हो रहा है उससे आप प्रभावित नहीं हो, आप जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको आप प्लीज ध्यान से सुनिए। सो जो संत महात्मा ने कहा कि जो ये राजकुमार है, इसने अपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए थे इसने, और वो पुण्य कर्मों के प्रभाव से ये इस जन्म में राजकुमार बन गया। लेकिन अभी ये राजकुमार बनके कुछ और अच्छे पुण्य कर्म नहीं कर रहा, तो अगर ये जब भी इसकी मृत्यु होगी तो इसको नरक में जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको आशीर्वाद दिया कि तू चिरंजीवी भव, के तुम्हारी आयु लंबी हो, ताकि जितना समय नरक जाने से बच सकते हो बचे रहो, है ना। उसका देखो फायदा सोचा उन्होंने। तो उन्होंने बोला चलो ये बात समझ में आ गई, लेकिन आपने ब्रह्मचारी को ये क्यों बोला कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तो उन्होंने बोला देखो, ब्रह्मचारी जो है बचपन से ही कितनी तपस्या में लगा हुआ है, हमेशा व्रत करता रहता है, और कितना सूख के दुबला हो गया है, जितने ये व्रत कर चुका है, जितना ये तपस्या कर चुका है, जब भी इसकी मृत्यु होगी ये बहुत अच्छी गति को प्राप्त होगा, इंद्र का पद मिल जाएगा इसको। तो इसीलिए मैंने इसको ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी वैसे ही तुम जो है तुम्हें स्वर्ग का राज्य भोगने को मिलेगा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप ये बताइए कि जो कसाई का बेटा है, कसाई का बेटा, उसको आपने बोला कि ना तू जी ना तू मर, तो इसका क्या मतलब हुआ। नहीं, तो उन्होंने बोला देखो, जो कसाई का बेटा है इसने पिछले जन्मों में भी बहुत बुरे कर्म किए, और बुरे कर्म किए इसलिए उसका जन्म जो है इस प्रकार इस कसाई के घर में हुआ, और जब तक ये जिंदा रहेगा ये कष्ट ही भोगता रहेगा। आपने कोई देखा है कि कोई कसाई है बहुत ही समृद्धशाली हो, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है उसका, है ना। तो उन्होंने कहा पूरी जिंदगी ये कष्ट ही भोगेगा, इसका जीना अच्छा नहीं है, ये जब तक जिएगा कष्ट ही भोगता रहेगा, तो क्या मर जाए। तो उन्होंने बोला इसका मरना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इतने पाप किए हैं इसने इस जीवन में भी, अगर मरेगा तो नरक में जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको आशीर्वाद दिया कि तू ना जी और ना मर। तो उन्होंने बोला आपने जो भक्त है, आपने भक्त को बोला कि तू जी या मर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसका क्या भेद है, इसके अंदर क्या रहस्य है। सो जो महात्मा ने उस संत ने बोला कि देखो ये जो भक्त है ये अभी क्या कर रहा है, ये जो भक्त है हमेशा भगवान के भजन में लगा रहता है, हमेशा जोर जोर से बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सो ये जो आपके पास कुछ सोवा लेन मुलट्ठी वगैरह होगी, कुछ मिश्री या कुछ? हाँ, सो उन्होंने कहा कि ये जो भक्त है हमेशा भगवान की आरती करता है, भगवान का भजन करता है, लोगों को भगवान के बारे में बताता है और हमेशा जो है भगवान की स्तुति में लगा रहता है, भगवान के नामों का जप कर रहा है। सो क्योंकि ये भगवान की सेवा में लगा हुआ है यहाँ पर, तो जब भी ये शरीर छोड़ेगा तो ये सीधा भगवान के धाम जाएगा। और भगवान के धाम में क्या करते हैं लोग? भगवान के धाम में, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान के धाम में जितने भी लोग हैं सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। संभ्रम सेव्य मानम। सो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देखिए मैं उन गोविंद का भजन करता हूँ। किन गोविंद का भजन करता हूँ? जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कि हर पत्थर चिंतामणि पत्थर है। और चिंतामणि पत्थर का क्या स्वभाव होता है कि अगर सोने, अगर लोहे को छुआ दिया तो वो सोना बन जाएगा, है ना? बहुत कीमती होता है, आजकल तो मिलता भी नहीं है। लेकिन भगवान के धाम में हर पत्थर चिंतामणि पत्थर है। तो उन्होंने पूछा, जो वृक्ष है वहां पर, हाँ, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा, तो जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष क्या होता है कि आप वृक्ष के नीचे खड़े हो, आप बोलो कि मुझे खीर चाहिए, तो फटाक से आपके पास एक बहुत ही स्वादिष्ट एक कटोरा खीर आ जाएगी। आपने वो कटोरा खीर खाई, आपने बोला कि अभी मन नहीं भरा, गुलाब जामुन दो, तो एकदम से गुलाब जामुन आ जाएंगे। आप बोलो कि मुझे प्यास लगी है, मुझे बहुत ही सुगंधित स्वादिष्ट जल दो, तो एकदम शरबत आ जाएगा आपके पास, रूह अफ़ज़ा वाला। सो जो कल्प वृक्ष है, हर वृक्ष वहां पर कल्प वृक्ष है। और जो गायें, जो गायें सारी की सारी गायें जो हैं, वो सुरभि गायें हैं। सुरभि गायें का मतलब है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में 20 लीटर दूध देती हैं। जो सुरभि गायें हैं वो आप बोलो कि मुझे 1000 लीटर चाहिए दूध आज, आपको 1000 लीटर दूध देंगी और एकदम सुगंधित दूध। और वो दूध ऐसा होता है कि उसमें चीनी नहीं मिलानी पड़ती, मीठा होता है वो दूध, है ना? आप उस दूध को अगर काढ़ेंगे तो क्या होगा, रबड़ी बन जाएगी एकदम मीठी, बगैर चीनी मिलाए, है ना? सो जो हरेक गाय है वो सुरभि गाय है। तो भगवान वहां पे क्या करते हैं? तो भगवान वहां पर गायों की सेवा करते हैं, गायों को चराते हैं भगवान वहां पर। तो गायों को चराते हुए थक जाते होंगे भगवान, नहीं? तो कह रहे हाँ, जब भगवान गायों को चरा के आते हैं तो भगवान बोलते मैं थक गया हूं, तो वहां पर लक्ष्मी सहस्त्र शत, वहां पर लाखों लक्ष्मियां हैं और सारी लक्ष्मियां मिलके भगवान की चरण सेवा करती हैं। संभ्रम सेव्य मानम, भगवान की चरण सेवा करती हैं। तो क्या आप ऐसी जगह पे जाना नहीं चाहोगे? कितने लोग ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं? ओ, आप नहीं जाना चाहते? कितने लोग जाना चाहते हैं? दोनों हाथ खड़े करो। सो हम जो आपको बात बताने वाले हैं, आप सब मिलके अगर आप उसका पालन करोगे तो आप सब भगवान के उस धाम में जा पाओगे और आप स्वयं अपनी आंखों से ये सारा दृश्य देख पाओगे और आप खुद कल्प वृक्ष के जो फल है, जो कल्प वृक्ष से खीर मिलेगी, गुलाब जामुन मिलेंगे, रसगुल्ले मिलेंगे, शाही पनीर मिलेगा, और क्या है, छोले भटूरे मिलेंगे। सो जितनी भी वस्तुएं मिलेंगी आप सब उसका स्वाद ले पाओगे, ठीक है? सो और उसको खाकर आप ऐसा नहीं होगा कि पेट खराब हो जाएगा. आप कितना ही खा लो पेट कभी खराब नहीं होगा. जब आपका मन भर जाए तो छोड़ दो. ऐसा नहीं है कि आपने दो गुलाब जामुन खाए, ओ अभी इच्छा तो है खाने की लेकिन पेट भर गया. वहां पर ऐसा नहीं है. अगर आपकी इच्छा है 1000 गुलाब जामुन खाने की, आप 1000 गुलाब जामुन खाओ, आपका पेट नहीं भरेगा. लेकिन जब मन भर जाएगा तो पेट भी भर जाएगा, है ना. इतनी अद्भुत जगह है वो. तो संत ने कहा क्योंकि ये जो भक्त है ये यहाँ पर भी भगवान की सेवा में लगा है, और जब इसकी मृत्यु होगी, जब ये शरीर छोड़ेगा, तो जो ये यहाँ पर कर रहा है, भगवान की आरती कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है, वहां पर भी जाकर यही काम करने वाला है. तो यहाँ पर क्यों कर रहा है वो ये काम? यहाँ पर इसलिए कर रहा है कि यहाँ पर वो ट्रेनिंग ले रहा है ना. जैसे ये सब छोटे बच्चे हैं, ये अभी छोटी छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ABCD पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग अभी 2+2=4 पढ़ रहे होंगे, और कुछ लोग अभी पहाड़े सीख रहे होंगे. तो इसका क्या फायदा है 2+2=4 सीखने से? इसका फायदा है कि इसी से आगे चल के और ज्यादा जो उन्नत पढ़ाई है वो कर पाएंगे, है ना. 11वीं 12वीं में बहुत मुश्किल सवाल आते हैं. तो जो अभी जो ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि आगे जाके और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे. जो माताएं हैं पहले के जमाने में, हमसे एक पीढ़ी पहले तक भी जो लड़कियां होती थी उनको छोटी उम्र से ही खाना बनाना सिखाते थे उनको. आप लोग सिखा रहे हो बच्चों को, जो ये बच्चियां हैं उनको खाना बनाना सिखा रहे हो आप लोग? आप में से कितने बच्चों को खाना बनाना आता है? किसी को नहीं आता. चाय बनानी सबको आती है. और ब्रेड पे मक्खन लगाना आता है? सो आपको, आप बोलोगे कि हमें क्यों सिखा रहे हो, हमें खेलने दो. लेकिन जो आपके माँ बाप हैं, आपके माँ बाप को पता है कि आगे जाके काम आएगा, है ना. जब आप लोग अभी अपने घर में हो कि पराए घर में हो? गलत, आप लोग पराए घर में हो. आप जब आपकी शादी हो जाएगी फिर आप अपने घर में चले जाना, तो वो आपका जो है वो आप कह सकते हो कि ये मेरा घर है. क्योंकि जब तक आप जीवित रहोगे उसी घर में आपको रहना है. यहाँ पे तो कुछ टाइम के लिए रह रहे हो आप, तो फिर आप कैसे कह सकते हो मेरा घर है, है ना. तो आपको भी ये बात नहीं पता, लेकिन आपके माँ बाप को पता है ना. इसलिए आपके माँ बाप आपको बोलते हैं, अच्छा चल चाय बना के ले आ, तेरे को मैं टॉफी दूंगी. बोलते हैं नहीं बोलते? टॉफी नहीं देते तो फिर आप चाय क्यों बनाते हो? आप बोलो टॉफी दो तो चाय बनाऊंगी मैं, नहीं. सो आपके जो माँ बाप है आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि जब आप शादी के बाद दूसरे घर जाओगे तो आपको अच्छे से, आपको वहां प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना. आपके सास ससुर आपको बोलेंगे नहीं, क्या कुछ सीख के नहीं आई, तो माँ ने कुछ सिखाया नहीं था तेरे को, है ना. सो इसी तरह भगवान के धाम में हर व्यक्ति, हर वस्तु भगवान की सेवा में लगी हुई है. सो भक्ति वो ट्रेनिंग है, भक्ति वो सीख है, जिससे आप समझ सकते हो कि भगवान के धाम में कैसे व्यवहार करते हैं. जब आप लोग यहाँ पर ये ट्रेनिंग में पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाओगे, जब आप पूरी तरह से अच्छे से समझ जाओगे कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, तो भगवान आपको अपने धाम ले जाएंगे. पहले हर व्यक्ति हिंदुस्तान में इस बात को जानता था, इसीलिए वो बहुत ही सादगी से रहते थे, बहुत ही सादा जीवन बिताते थे और भगवान की सेवा में लगे रहते थे. सो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने बोला कि तो बहुत कंजूस है, पैसा है खर्चते नहीं है। वो इस बात को नहीं समझ रहे थे कि जो भारतीय हैं उनको पता है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च के, बहुत ज्यादा टीवी फ्रिज और एसी लगाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद के कुछ फायदा नहीं है। जितना सादगी से रहेंगे, जितना सादा जीवन बिताएंगे। हरि बोल। प्रभु आप क्या बात कर रहे हो, आप चुप क्यों नहीं बैठ रहे? हाँ आप मतलब क्या यहाँ पे मजाक थोड़ा ना हो रहा है? मैं आप सब लोगों को 50 बार बोल चुका हूँ चुप रहो, आप लोग चुप क्यों नहीं रहते हो? अगर आप नहीं चुप बैठ सकते चले जाओ यहाँ से, लेकिन आप यहाँ पर हो तो चुपचाप सुनो ना हमारी बात में। हम आपके पास पहली दफा आए हैं, दोबारा पता नहीं कब आएंगे, आप लोग शोर मचाए जा रहे हो। आप लोग क्या कह रहे हो कि वापस चले जाए? आप लोग सब चुप करके आप बात सुनो, आपके फायदे की बात बताने आए हैं और बाद में हम आपसे पैसे भी नहीं मांगेंगे, तो आप क्यों नहीं आराम से आप सुनते? सो सादा जीवन बिताने का फायदा क्या होता है? सादा जीवन बिताने का फायदा होता है कि आपके पास समय की बचत होती है ना? समय की बचत का मतलब, जब आपके पास, हर एक के पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन अगर हम तरह तरह के कामों में लगे रहेंगे तो हमारे पास सारा टाइम खत्म हो जाएगा, है ना? अगर हम टीवी देखेंगे, मोबाइल फोन में लगे रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो समय हम आराम से बैठ सकते थे वो टाइम उसमें मोबाइल फोन टीवी में चला जाएगा। तो हमारे पास कभी टाइम बचेगा ही नहीं कि हम भगवान का भजन कर पाए, हम ये सोच पाए कि आखिर एक जानवर में और हम में फर्क क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं कि जानवर और इंसान में कुछ फर्क नहीं है, जानवर भी चार चीजें कर रहा है, इंसान भी चार चीजें कर रहा है ना? तो वो चार चीजें, आप बोलो कि मैं तो बहुत सारे काम करता हूँ, आप दुनिया भर के जितने भी काम कर लो उनको चार खानों में डाल सकते हो आप। पहला क्या है? आहार। खाना खाते हो आप, कभी कुछ खाओगे, कभी कुछ खाओगे, कभी चावल, कभी दाल, कभी रोटी, कभी पराठे, कुछ भी खाओ, लेकिन काम तो खाने का ही है ना, है ना? सो हम कुछ भी खा रहे हैं लेकिन रोटी खा रहे हैं, हम अन्न खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं अपना। जानवर क्या कर रहे हैं? जानवर क्या कर रहा है? वो भी पेट भर रहा है। दूसरा काम क्या है? निद्रा। हम सोते हैं, है ना? कोई फुटपाथ पे सोता है, कोई एसी कमरे में सोता है, लेकिन सब लोग सो रहे हैं। कुत्ता भी सड़क पे सो रहा है लेकिन सो रहा है। तो जानवर और हम में क्या फर्क हुआ? वो भी सो रहा है, हम भी सो रहे हैं। तीसरा क्या है? आहार, निद्रा, भय। हम अपनी रक्षा में लगे हुए हैं और जानवर भी अपनी रक्षा में लगा हुआ है। हम अपनी रक्षा कैसे करते हैं? पैसा कमाकर, बड़ा बड़ा घर बनाकर, हाँ, बहुत ज्यादा एजुकेशन लेके, शिक्षा लेके, है ना? जो ज्यादा शिक्षित हो, लोग बोलते हैं कि इसका भविष्य ज्यादा सुरक्षित होगा, नहीं? तो हम जितने भी ये काम कर रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं अपने को सुरक्षित रखने के लिए, है ना? सो कुत्ता भी, बिल्ली, सब जानवर अपने आप को सुरक्षा, अपनी सुरक्षा में लगे हैं। आप उसको पत्थर दिखाओ, एकदम कुत्ता भागेगा अब बचने के लिए पत्थर से, है ना? उसको भी पता है कि अगर पत्थर लग गया तो चोट लग जाएगी, दर्द होगा, है ना? सो अभी तक हमने तीन काम बताए, वो तीन काम हम भी कर रहे हैं और जानवर भी कर रहे हैं, और चौथा काम क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। हम भी बच्चे पैदा कर रहे हैं और जानवर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि कोई और पांचवा काम कर रहे हो आप लोग? ये जो हमने आपको चार काम बताए हैं, खाना, पीना, सोना, अपनी रक्षा करना और बच्चे पैदा करना। हाँ,
भगवान का भजन करते हैं।
तो भगवान का भजन तो अभी उसी पे तो आ रहे हैं, भगवान के भजन पे। ये इतनी सारी कहानी हमने भगवान के भजन के लिए तो निकाली है। सो हम आप ऐसा कोई काम नहीं सोच सकते जो कि जानवर नहीं कर रहे लेकिन आप कर रहे हो। तो हमारे शास्त्र ये प्रश्न उठा रहे हैं कि फिर जानवर और इंसान में फर्क क्या हुआ। तो हमारे शास्त्रों ने बोला कि जो मनुष्य है वो दो पैरों वाला पशु है। कई पशु, ज्यादातर पशु चार पैर के होते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो दो पैर वाला पशु है। क्यों? क्योंकि जो काम जानवर कर रहा है वही काम इंसान भी किए जा रहा है। तो फिर इन दोनों में फर्क कैसे करेंगे? आप बोलो कि इंसान के पास बुद्धि है, तो बुद्धि तो जानवर के पास भी है। उसके पास कम है, आपके पास ज्यादा है? बुद्धि उसके पास भी है। अगर बुद्धि नहीं होती तो आहार निद्रा भय मैथुन कैसे करता वो? नहीं। तो जानवर और इंसान में क्या फर्क हुआ? तो हमारे शास्त्र ने बोला कि जानवर और इंसान में फर्क होता है धर्म का। जानवर धर्म का पालन नहीं कर सकता, लेकिन इंसान धर्म का पालन कर सकता है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि देखो, अगर इंसान का जन्म मिला है तो धर्म का पालन करो। तो हमने कहा हम तो नहीं करेंगे, हम क्यों करें? तो हमारे शास्त्रों ने बोला धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर आप धर्म का पालन नहीं करोगे तो आप में और पशु में कुछ फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि धर्म के अलावा चार काम पशु भी कर रहे हैं और चार काम आप भी कर रहे हो। तो फिर प्रश्न उठा कि अगर ऐसी बात है तो फिर धर्म क्या है? क्या हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या ये धर्म है? तो हमारे शास्त्रों ने बोला नहीं, आप लोगों को धर्म का मतलब ही नहीं पता। धर्म का मतलब आप में से किसी को पता है? किसको पता है? किसी को नहीं पता धर्म का मतलब। तो हमारे शास्त्रों ने सवाल उठाया कि अच्छा एक बात बताओ, जो पानी है वो मुसलमान पिए तो अलग टेस्ट आएगा क्या, और हिंदू पिए अलग टेस्ट आएगा? सेम टेस्ट आएगा नहीं? जो आग है क्या सिख को जलाएगी, मुसलमान को नहीं जलाएगी? जो भी आग को हाथ लगाएगा आग उसको जलाएगी। तो बोलते हैं ये धर्म है, मतलब जो किसी भी वस्तु का स्वभाव होता है। जैसे पानी का जो स्वभाव है तरलता, पानी बहता रहता है ना, और पानी का स्वभाव है प्यास बुझाना, है ना। आग का स्वभाव है जलाना, है ना। तो ठीक है, हम समझ गए कि धर्म की परिभाषा क्या है। आप लोग समझ गए धर्म की परिभाषा? अगर आग जलाना छोड़ देगी तो क्या हम उसको आग बोलेंगे? हम उसको आग नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि आग अगर जला रही है तो आग है, नहीं तो बर्फ है वो, नहीं। सो हर वस्तु में एक उसका अंतरंग, उसका अंदरूनी गुण होता है, उस गुण को धर्म बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, हम समझ गए कि धर्म क्या है। तो आप बताओ कि इंसान का धर्म क्या है? नहीं, चलो हमने मान लिया कि धर्म हर चीज का धर्म है। जब आग का धर्म है, मिट्टी का धर्म है, पानी का धर्म है, सूरज का धर्म है, चंद्रमा का धर्म है, तो फिर इंसान का भी धर्म होगा। तो इंसान का धर्म क्या है आप जानते हो? आप आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। तो इंसान का धर्म है सेवा करना, नहीं? इंसान का धर्म है सेवा करना। आप बोलोगे ये कैसा, हमने तो आज तक कभी नहीं सुना। हाँ, सो अगर आप अपने जीवन को देखो, छोटे बच्चे भी देखें और जो बड़े हैं वो भी देखें। जो छोटे बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की, अपने टीचर की सेवा में लगे, नहीं? अगर टीचर बोलता जाओ पानी लेके आओ तो भाग के जाते हो ना पानी लाने के लिए, है ना? माँ बाप बोलते हैं बच्चों को जाओ बाजार से सामान लेके आओ तो फौरन जाके लाते, नहीं लाते? तो वो सेवा है कि नहीं सेवा है? और बच्चे बच्चे क्या, जो जो माँ बाप है वो क्या बच्चों की सेवा में लगे हुए कि नहीं लगे हुए? क्या आप अपने बच्चों की सेवा में लगे हो कि नहीं लगे हो? कैसे कर रहे हो अपने बच्चों की सेवा? उनको पढ़ाकर लिखाकर, उनको अच्छे से अच्छा भोजन खिलाकर, अच्छे से अच्छा कपड़ा देकर, नहीं? और जो माँ बाप है वो खुद फटा हुआ कपड़ा डाल लेते हैं लेकिन बच्चों को अच्छा कपड़ा डालते हैं, तो ये सेवा नहीं है तो और क्या है? हाँ, सो कई लोग होते हैं वो समाज की सेवा में लग जाते हैं, कई लोग होते हैं जैसे मोदी है वो सोच रहे हैं मैं देश की सेवा में लगा हुआ, है ना? सो हर व्यक्ति, हर इंसान सेवा में लगा हुआ है। किसी को कोई भी सेवा के लिए व्यक्ति नहीं मिलेगा तो वो कुत्ते की सेवा करना शुरू कर देता है, है ना? आपने देखा बहुत सारे लोग कुत्ते पाल लेते हैं, बिल्ली भी पाल लेते हैं। आपने तो नहीं पाली? सो कई लोग जो हैं उनको कोई सेवा के लिए नहीं मिलता तो कुत्ते की सेवा करना शुरू कर देते हैं, रोज उसको लेके जाते हैं शौच कराने के लिए। अपने बच्चों की शौच साफ नहीं करेंगे, बच्चों का टट्टी पेशाब साफ नहीं करेंगे, कुत्ते को लेके जाएंगे। हाँ, बोलेंगे बच्चे से तो हमें घिन आती है, कुत्ते की टट्टी उठाने के लिए तैयार रहते हैं, वो भी सेवा में लगे हुए। सो हर व्यक्ति सेवा में लगा हुआ है, इसका मतलब है सेवा करना इंसान का धर्म है। आप लोग मानते हो इस बात को कि नहीं मानते? कितने लोग मानते हैं? चलो ठीक है। सो अगर हम सब सेवा में लगे हुए हैं, आप सब सेवा में लगे हुए हो, तो अगर आप सब सेवा में लगे हुए हो तो सेवा से संतोष क्यों नहीं मिल रहा? हमारा जो मन है वो संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा सेवा करके? आप लोगों का मन संतुष्ट है घर वालों की सेवा करके? कुछ ना कुछ कमी है, वो कमी अभी हमने सुनी, इतना जोर से शोर मच रहा था, लड़ रहे थे ना आपस में। हाँ, हालांकि जो पति है वो पैसा कमा के घर में ही ला रहे हैं और जो पत्नी है वो सारा दिन घर के काम काज में लगी हुई है, फिर भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आप लोग भी तो कभी लड़ाई हुई होगी कल परसों में। सो सेवा करके सुख क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम नहीं जानते कि किसकी सेवा करके हमें परम सुख की प्राप्ति होगी। ये बीच में शोर आता है ना तो पूरा लिंक एक टूट जाता है, जो हम बात कर रहे होते हैं एकदम बीच में विघ्न आ जाता है उसके अंदर, इसलिए बिल्कुल शांत वातावरण चाहिए बात करने के लिए। सो हमें संतोष नहीं मिल रहा क्योंकि हमें पता नहीं है कि संतोष कहाँ से मिलेगा। हमें संतोष क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमारा जो ये शरीर है, हमारा शरीर, इसके तीन गुण हैं। जो आप सबका शरीर है इसके तीन गुण है। इसका पहला गुण क्या है? असत। ये शरीर खत्म हो जाएगा। हम चाहे जितना मर्जी देसी घी पिलाएं, जितना मर्जी लोम विलोम करें, जितना मर्जी बाबा रामदेव के नुस्खे लगाएं, लेकिन एक दिन तो बोलते हैं पूरा हो गया। अभी अधूरे हो आप लोग, अधूरे ही बने रहना। तो पूरा होने वाले को उठा के ले जाते। सो पहला गुण क्या है हमारे शरीर का? असत, नश्वर है। 10 साल में, 50 साल में, 100 साल में खत्म हो जाएगा। मानते हो क्या? नहीं मानते हो? और दूसरा गुण क्या है हमारे शरीर का? अचित। चित का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। हम सबको ज्ञान है ही नहीं। आप में से कोई कह सकता है कि मुझे सब कुछ पता है? ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ धरती पर, ना पहले ना अब, जो बोल सके मुझे सब पता है। क्यों हर चीज पता नहीं लग सकती? क्योंकि इस शरीर का स्वभाव है हम हर चीज के बारे में पता नहीं लगा सकते। जो पहले पता थी अब भूल चुकी हैं। हमें बहुत सारी चीजें बचपन में पता थी, आज थोड़ा ना याद है, हमें भूल गए हम नहीं। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी जो हमें आज तक पता ही नहीं चली। सो पहला गुण क्या था इस शरीर का? पहला गुण क्या था? अरे आप लोग सो तो नहीं रहे? क्या था पहला गुण? असत। असत है ना? असत का मतलब खत्म हो जाएगा, याद रखना इसको। और दूसरा हमने क्या बताया था? ज्ञान नहीं है, अचित। शाबाश, अचित। हाँ, और तीसरा क्या है? तीसरा गुण है निरानंद। निरानंद में दो शब्द हैं, नी और आनंद। नी आनंद का मतलब है आनंद नहीं है। तो क्योंकि हम अपने असित, असत, अचित, निरानंद शरीर से एक दूसरे असत, अचित, निरानंद शरीर की सेवा कर रहे हैं, इसीलिए कभी सुख नहीं मिलेगा। तो सुख कैसे मिलेगा? तो सुख मिलेगा अगर हम अपने इस असत, अचित और निरानंद शरीर से, अगर हम ऐसे व्यक्ति की सेवा करेंगे जो कि सत है, चित है और आनंद से भरा हुआ है। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सत है, मतलब कभी नष्ट नहीं होता, चित है मतलब उसको सभी जानकारी है, और आनंद है मतलब उसका नाम लेने से, उसके बारे में सोचने से मन में आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे व्यक्ति का एक नाम है और वो नाम है कृष्णा। सो अगर हम अपने इस खराब शरीर से, बुरा मत मानना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका शरीर खराब है, आप सब अपने आप को बहुत सुंदर समझते होंगे और हो सकता है हो भी, लेकिन शरीर तो खराब ही है। कितना ही सुंदर शरीर हो, बुढ़ापे में तो डरावना ही लगता है। लगता है क्या? नहीं लगता? दांत वांत बाहर आ जाते हैं, है ना? लोग बुजुर्ग के साथ बैठने में संकोच करते हैं ना, ओ बाबे के पास बैठेंगे दिमाग चाट जाएगा, नहीं? जो बहू है सास के पास नहीं बैठती, वो 4 बार आवाजें मारेगी, सुनेगी नहीं बहू, अरे सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा आप आवाज मार रहे थे, पहली आवाज ही सुन ली थी, लेकिन वो बोलेंगे जाऊंगी और दिमाग खाएगी बुढ़िया। सो अभी जितना टाइम बिना पास गए निकल जाए उतना ही अच्छा है ना? सो कितने ही सुंदर हम हो, बाद में जाके बुढ़ापे में डरावना हो जाएगा शरीर। और कितनी सुंदर आपकी चाल हो बुढ़ापे में टेढ़ी मेढ़ी हो ही जाएगी, है ना। आपके दांत कितने सुंदर हो बुढ़ापे में गिर जाएंगे, है ना। आपके बाल कितने ही सुंदर हो या तो झड़ जाएंगे या सफेद हो जाएंगे। सो ये खराब शरीर के साथ अगर हम ऐसे व्यक्ति की सेवा करेंगे जिसका शरीर हमेशा सुंदर बना रहता है। आपने कभी, आप में से किसी व्यक्ति ने भगवान कृष्ण की फोटो देखी जिसमें वो बूढ़े दिख रहे हो? हाँ, आपको पता है जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो भगवान कृष्ण की उम्र कितनी थी? कितनी थी? 125 साल, है ना। लेकिन आप भगवान को, जब भगवान वो रथ में खड़े हुए हैं, अर्जुन पीछे खड़ा हुआ है, घबराया हुआ, परेशान, उसने अपना धनुष भी एक तरफ फेंका हुआ है, तो आप सबने फोटो देखी है ना भगवान कृष्ण की कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ पर खड़े हुए, तो भगवान बूढ़े लग रहे हैं कि जवान? जवान लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा जवान बने रहते हैं। और भगवान की उम्र कितनी है? 16 साल। भगवान हमेशा 16 साल के बने रहते हैं। करोड़ों वर्ष बीत जाए, कोई पूछे भगवान कृष्ण से, अच्छा भाई साहब आपकी उम्र कितनी है, तो भगवान बोलेंगे इसमें क्या बात है, 16 साल है। 1 करोड़ साल से मैं कह रहा हूँ मेरी उम्र 16 साल है, क्योंकि भगवान की उम्र कभी बदलती नहीं है। सो एक बार एक महिला थी, स्त्री, वो कोर्ट में गई, और कोर्ट में गई तो वहां पे गवाही देने के लिए, तो जज ने उसको कटहरे में खड़ा कर दिया। तो वकील ने उससे पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? वो महिला से उम्र पूछ ली उसने, तो वो महिला ने बोला कि मेरी उम्र है 30 साल और कुछ महीने। तो वकील ने बोला, आपकी उम्र 30 साल तो नहीं लग रही, ज्यादा लग रही है, कितनी उम्र है, कितने महीने? तो उसने क्या बोला, 240 महीने। तो कितनी उम्र हो गई उसकी? 50 साल की, है ना, ठीक है ना। 240 को 12 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, 20 जमा 30 50 हो गया, है ना। लेकिन भगवान की उम्र ऐसे नहीं होती कि 16 साल और कुछ महीने, भगवान की उम्र जो है हमेशा 16 साल की बनी रहती है। तो प्रश्न है कि हम आखिर भगवान कृष्ण की सेवा क्यों करें? हम भगवान कृष्ण की सेवा इसलिए करें क्योंकि जैसा भगवान कृष्ण का स्वभाव है, भगवान कृष्ण का स्वभाव कैसा है? सत, चित और आनंद का। तो जैसा भगवान कृष्ण का स्वभाव है, हम भी उस स्वभाव को लेना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी, माता ये वहां का देख रहे हो, वहां पे क्या है? प्लेट को देख रहे हो, कब मिलेगा खाना? ये भौतिक संसार ऐसा है, अपने फायदे की बात भी समझ में नहीं आती। भागवतम में एक श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोगों को बार बार समझाओ, समझ ही नहीं आती कि भगवान का भजन करने में उनका फायदा है। बार बार बोलो, वो बोलेंगे पता नहीं हमें क्यों बोल रहे हैं, इसका क्या फायदा है। आप ये तो नहीं सोच रहे मुझे क्या मिलने वाला है इसमें से। सो हम भगवान कृष्ण की सेवा क्यों करना चाहते हैं, क्यों करनी चाहिए हमें? क्योंकि जो भगवान कृष्ण का स्वभाव है वो हमें प्राप्त हो जाए। आप बोलोगे कि भगवान कृष्ण का, अगर भगवान कृष्ण की हम सेवा करें तो उनका स्वभाव हमें कैसे प्राप्त हो जाएगा? तो उसका उदाहरण दिया है हमारे शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि जैसे एक लोहे की छड़ है ना, लोहे की छड़ है, अभी आप हाथ लगाओ तो ठंडी लगेगी ना, नहीं? उस लोहे की छड़ को आप भट्टी में डाल दो और भट्टी में पड़ी रहने दो उसको, तो वो लोहे की छड़ कैसी हो जाएगी? एकदम लाल सुर्ख हो जाएगी। अभी आप उसको हाथ लगाओगे तो क्या होगा? जला देगी। भट्टी में हाथ डालेंगे तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। इसका मतलब जो भट्टी का जो स्वभाव है वो भी लोहे की छड़ में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो जो छड़ थी लोहे की वो भट्टी के साथ में छू रही थी। इसी प्रकार हम लोग भगवान की सेवा के माध्यम से हम भगवान को छू सकते हैं। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम भगवान को छू लेंगे हम, और अगर हम भगवान को छू के रखेंगे तो जो भगवान के गुण है, क्या गुण है भगवान के? सत, चित और आनंद। तो जो ये भगवान के तीन गुण है, ये तीन गुण हमारे भीतर प्रवेश कर जाएंगे, है ना? तो आप सब चाहते हो भगवान के जो सच्चित आनंद है उसको प्राप्त करना? कितने लोग चाहते हो? आप बोलिए हरि बोल। सो अब आप बोलो कि हम भगवान को कैसे छुएं, हम भगवान की सेवा कैसे करें। तो कलयुग में भगवान कृष्ण आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। यहाँ पे है फोटो? हाँ, सो ये फोटो दिख रही है आप सबको? आप बाद में करीब से आकर देख लेना, इनके दर्शन कर लेना। तो ये सबसे बीच में, ये इसमें पांच व्यक्ति खड़े हैं, सबसे बीच में चैतन्य महाप्रभु हैं। सो कलयुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने बोला कि देखो, पहले के युगों में लोग बहुत सारी तपस्या करते थे, बहुत सारे यज्ञ करते थे, लेकिन अभी संभव नहीं है। तो अभी क्या करेंगे कलयुग के लोगों का कल्याण करने के लिए? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप सिर्फ दो काम करो, अगर वो दो काम कर लिए तो आप भगवान को छू पाओगे। अगर भगवान को छू लिए तो भगवान के गुण आपको मिल जाएंगे। तो पूछा लोगों ने कि अच्छा आप बताओ हमें फटाफट वो दो काम कौन से हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो पहला काम है, आप सब जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप सब मिलके जोर जोर से हमेशा जितना हो सके भगवान के नाम का जप करो। तो आप, कोई बोलेगा मैं तो आज नहाया नहीं हूं, तो बिना नहाए भगवान का जप कर सकते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाँ कर सकते हो। तो किसी ने बोला मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, अभी ठंडी का मौसम आ गया, तो क्या रजाई में घुस के भगवान के नाम का जप कर सकते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? हाँ कर सकते हैं, है ना? किसी ने बोला कि मैं थोड़ा लेट उठता हूं, अभी ब्रश नहीं किया मैंने, क्या मैं भगवान का नाम ले सकता हूं? तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? हाँ नाम ले सकते हो। उन्होंने बोला कोई बहाना मत लगाना कि इस कारण से नहीं लिया, इस कारण से नहीं लिया। कैसी भी तुम्हारी सिचुएशन है, कैसे भी तुम चाहे शुद्ध हो चाहे शुद्ध नहीं हो, भगवान का नाम लो। क्यों भगवान का नाम लो? क्योंकि भगवान का नाम परम शुद्ध है। अगर आप अपनी अशुद्ध शरीर से, अशुद्ध मन से, अशुद्ध जीवा से अगर भगवान का नाम लोगे तो आपका शरीर मन जीवा सब शुद्ध हो जाएंगे। आप सब लोगे भगवान का नाम? तो लोगों ने पूछा दूसरा काम क्या करें? चलो भगवान का नाम लेंगे। उन्होंने बोला दूसरा काम करना है कि आप जो भी खाओ भगवान को भोग लगा के खाओ, है ना? किसी को मत देना, पड़ोसी मांगने आ जाए मत देना चाहे। हाँ, ऐसा नहीं है कि भगवान को भोग लगा दिया, अभी बांटना पड़ेगा, मत बांटो चाय, अगर आप बांटो तो अच्छा है। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि मत बांटना, लेकिन अगर बांटने की इच्छा नहीं हो मत बांटना, भगवान को भोग लगाओ और खुद खा जाओ उसको, है ना। अगर आप ये दो काम करोगे, और इसमें माताओं का विशेष योगदान है इसके अंदर, अगर आप जो विशेषकर जो माताएं हैं वो अपने घर में, अगर जब भी आप लोग भोजन बना रहे हो चुपके से भोग लगा दो भगवान को, है ना, किसी को पता नहीं चले, जो भी आपने बनाया उसमें तुलसी का एक पत्ता डालो और भगवान को बोलो हे भगवान प्लीज आप इसको ग्रहण करो, बात खत्म, और कुछ चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बोलो, क्या बोलो, हे भगवान कृपया खा लो, हाँ कृपया ये भोजन ग्रहण करो, क्या बोल रहे, हे भगवान कृपया ये भोजन ग्रहण करो, हाँ करो की जगह कर लो बोलोगे, कर ले बोलोगे चलेगा, ठीक है। और ये लाइन बोलने के बाद आप सबको क्या करना है, आपको एक मंत्र बोलना है बहुत ही महत्वपूर्ण, वो मंत्र क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर आप लोग भगवान कृष्ण के नाम का जप करोगे, हर वस्तु भगवान को भोग लगा के खाओगे, जो आप बच्चे हो ना, आप बच्चों आपको आपकी मम्मी खाना दे आप पूछो भोग लगाया था, भोग लगाओ फिर हम खाएंगे, जब बच्चे जिद करेंगे तो माँ बाप को भोग लगाना ही पड़ेगा। और जो माताएं हैं, हाँ वो जो भी बना रही हैं अपने किचन में रसोई में, वो पहले भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद में परिवार वालों को खिलाओ, आप देखो आपके जीवन में कितना सुख और कितनी शांति आ जाएगी, है ना। सो आप सबसे प्रार्थना है, आप सब मिलके मेरे साथ में एक बार जोर से पूरे मन से भगवान के नाम का, इस मंत्र का हम जप करेंगे, और ये मंत्र याद कर लेना सारे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आप प्लीज इस मंत्र का जप करो, और जो भी खाओ भगवान को भोग लगा के खाओ, और सिर्फ ये दो काम करोगे आपका जीवन सफल हो जाएगा, और हमारे विजय प्रभु या वामन रूप प्रभु आप जो भी बोलो, ये आप सबके लिए मालाएं लेके आए हैं, पैसे की है फ्री है, फ्री में है तो एक मुझे भी दो। सो ये माला है, इसके अंदर प्रभु दिखाओ जरा उठके, हाँ सो ये झोली है, इसके अंदर माला है, इसमें 108 मनकों की माला होती है ये। सो आपको ये जप करने की विधि भी बता देंगे हम। सो आप सब जो भी माला लेना चाहो, अभी सुनहरा अवसर है, बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, कितना डिस्काउंट है, 100% फ्री में मिल रहा है,
भगवत गीता भी।
सो आप सब जो है झोली और माला ले सकते हो, ताकि आप गिन के भगवान के नाम का जप कर सको, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा।
सो आपका कुछ प्रश्न है, आपका आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई बात समझ में नहीं आई। सो हमारे वामन रूप प्रभु कह रहे हैं कि हमारे पास भगवत गीता भी है, अगर कोई लेना चाहिए, ये भी फ्री है, कितने पैसे हैं उसके, तो वैसे तो 200 रुपए की है, लेकिन आपको हम 50% डिस्काउंट दिवाली डिस्काउंट दे देंगे, अभी आपको 100 रुपए में दे देंगे, लेकिन हमें 500 रुपए वाला नोट मत देना, हमें वो पुराने वाले 100 रुपए का नोट देना, जिससे अच्छा ये कह रहे हैं आपके 500 रुपए वाला नोट भी ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है आप एक भगवत गीता लो और बोलो लाओ 400 रुपए वापस, वो नहीं देंगे हम आपको, ठीक है। आप कुछ कहना चाहते हैं आप?